जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भगवत गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी थ्रू द बॉडी फील द सोल। हरि हरि बोल। शिव से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरे नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल एवरीवन। हरि हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनके गीत को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में अपना सकें, है ना। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरम्भ कर चुके हैं, है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। इस प्रक्रिया में आज हम समझने वाले हैं कि हम भगवत गीता को कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। फाइनली फ्रेंड्स आज हम उस पड़ाव पर हैं जहां से भगवत गीता शुरू होने वाली है, है ना। एक बहुत अच्छी नींव हम रख चुके हैं, अध्यात्म से जुड़ी कुछ गलत धारणाएं हम समझ चुके हैं और कुछ मॉडल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने किया था ABCD मॉडल फॉर ए सुपर पॉजिटिव लाइफ, है ना। तो उसमें हमने समझा था कि अपने डिस्ट्रक्टिव टाइम को हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम कहाँ पर अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, और उस डिस्ट्रक्टिव टाइम को धीरे धीरे अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज से, सत्संग साधना सेवा सदाचार से रिप्लेस करते चलना। जैसे जैसे हम इसको करते चलेंगे डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, उससे फ्रेंड्स हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण जितने जितने प्रतिशत में आते जाएंगे उतना उतना हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे काबू में आना शुरू हो जाएंगी। हमारे ए अंदरूनी कुरुक्षेत्र में हमारे पांडव स्ट्रोंग होंगे, मतलब अपनी हमारी आध्यात्मिक सेहत और हमारी मानसिक सेहत जब सुधरेगी तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स हमारा फैमिली कैरियर अपने आप सुधर जाता है ना। स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ में बैलेंस आ जाता है ना। तो अब हम समझने वाले हैं आज कि भगवद गीता को समझने के लिए किस प्रकार का एटीट्यूड रखना है हमें। पहले तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भगवद गीता में ना हम कुछ चुनिंदा श्लोक पढ़ने वाले हैं। अगर हम कुछ सिलेक्टेड वर्स अपने जीवन में उतारे हैं, भगवान से अपना कनेक्शन बनाए, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन कैन लीड पॉजिटिव लाइफ, ए पर्सन कैन गेट लॉट ऑफ पीस इन हिज लाइफ। पहले क्या था कि गोलोक एक्सप्रेस में ना निखिल जी बताते हैं कि पहले वो एक एक डिवोटीज को पूरी पूरी भगवत गीता पढ़ाते थे। भगवत गीता की इंट्रोडक्शन खत्म करने में एक महीने से ज्यादा टाइम लग जाता था। तो निखिल जी बताते हैं कि इतना टाइम पढ़ाने के बाद काफी साल मतलब उन्होंने पढ़ाया ऐसे भगवत गीता यथा रूप, है ना, तो उनको समझ आया कि इतना टाइम पढ़ाने के बाद उनको समझ लगा कि लोगों का स्पिरिचुअलिटी में मैच्योरिटी लेवल LKG वाला होता है, और जो भगवत गीता में बातें हैं जो समझा रहे हैं हमें भगवान वो बातें होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल की, इसलिए बहुत हैवी हो जाता है और समय भी बहुत ज्यादा लगता था एक एक श्लोक समझाना डिटेल में, और वो भी जब तक किसी का सात्विक गुण ना बढ़ा हुआ हो, है ना। आप सोचो ना अभी जैसे हम भगवत गीता अभी 2020 में पढ़ रहे थे तो हम कितना दुनियादारी में उलझे हुए थे पहले, हमें ये बातें समझ भी नहीं आती। मैं अपना हमेशा इसलिए आपको एक्सपीरियंस बताती रहती हूँ कि जब 2017 में मैं सुनने लगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी भगवत गीता। आप तो इतना अच्छा बोल लेते हो, इतना अच्छा रिव्यू दे पाते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, बहुत मुश्किल से एक दो लाइनें मुंह से निकलती थी क्योंकि समझ ही नहीं आती थी, है ना। क्योंकि हम लोग दुनियादारी में इतने उलझे होते हैं, हम लोग इतने अशांत होते हैं अंदर से, रेस्टलेस होते हैं, ध्यान ही नहीं होता हमारा, हमें सिर्फ इतना होता है कि बस अपने ये प्रॉब्लम चली है इनसे कैसे छुटकारा पाए, है ना। तो मेजोरिटी लोगों का फ्रेंड्स शास्त्रों को समझने का, ज्ञान को समझने के लिए ना तो पेशेंस होती है और ना ही सबसे बड़ी बात है बचपन से कोई हमें कोई स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी नहीं होती है, ना घर में होती है, ना स्कूल में, कभी कॉलेजेस वगैरह में हमें कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती है। निखिल जी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बहुत साल उन्होंने पढ़ाया डिवोटीज को, तो घूम फिर कर 4-5 साल पढ़ाने के बाद, और फिर घूम फिर कर छोटी छोटी बातों में अटक जाते थे कि उसने मुझे फिर ये क्यों कहा, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। जैसे कि हम अटके रहते हैं हमेशा से ही, है ना, छोटी छोटी बातों में अपनी प्रॉब्लम्स में अटके रहते हैं, ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसे रहते हैं, है ना। तो उनको फिर ये लगा कि मैंने तो बातें बता दी इनको, क्योंकि भगवदगीता में है ही PhD वाली बातें, स्पिरिचुअल नॉलेज है वो, है ना, जो कि हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमने बचपन से इसकी ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, और ये जो डिवोटीज है वो बात करते हैं LKG वाली, है ना। तो फिर उनको लगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इससे बेटर है कि मैं कम टाइम में ज्यादा लोगों को भगवदगीता पढ़ा दूं। इसलिए फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि भगवदगीता में कुछ चुनिंदा श्लोक, कुछ सिलेक्टेड वर्सेस ही पढ़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेहनत कम लग रही है और ज्यादा डिवोटीज को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ रहा है ना। तो उन्होंने कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट श्लोक भगवद गीता से लिए और फिर उसका नाम सरल भगवद गीता हिंदी में और इंग्लिश में सिंप्लीफाइड भगवद गीता रखा, है ना। है तो वही है भगवद गीता के श्लोक, सेम श्लोक है, लेकिन पूरी भगवद गीता नहीं हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड वर्सेस हम 1st chapter to 18th chapter तक हम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे कि जो पुराने डिवोटीज है उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए डिवोटीज है उनको मैं समझा रही हूँ कि हम कुछ चुनिंदा श्लोक, कुछ सिलेक्टेड वर्सेस हम समझने वाले हैं, है ना। तो ये तो हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम किस प्रकार का हम माइंड सेट रखें और किन चीजों का हम ध्यान रखें कि भगवत गीता के वर्सेस हमें गहराई से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा वैदिक सिस्टम है ना, उसका सारा का सारा निचोड़ सार भगवत गीता में है ना, सारे हमारे वैदिक ग्रंथों का सार भगवत गीता है। भगवत गीता आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, इसलिए बताई थी कि अर्जुन अपने लाइफ के स्ट्रगल्स, जो कुरुक्षेत्र में उसके स्ट्रगल चल रहे थे, उसको ठीक से डील करे भगवान से जुड़े रहकर। देखो फ्रेंड्स, हमें ये समझना होगा कि जैसे अर्जुन अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में इन्वॉल्व्ड है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी ये कुरुक्षेत्र चल रहा होता है फ्रेंड्स। अब कुरुक्षेत्र क्या, ये हमने कल समझा था, ABCD वाला मॉडल स्टडी किया था, है ना। A फॉर अंदरूनी कुरुक्षेत्र, जिसने नहीं सुना है वो कल का सत्संग सुन सकता है स्काइप पे जाके, है ना। तो A फॉर अंदरूनी कुरुक्षेत्र, B फॉर प्राथमिक कुरुक्षेत्र बॉडीली हेल्थ एंड बॉडीली रिलेशनशिप, है ना। C फॉर कैरियर आर्थिक स्वास्थ्य, D फॉर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, है ना। तो ये सब हमारे जीवन के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। देखो फ्रेंड्स, अर्जुन को तो भगवान ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में डाल दिया था। क्या करना था उसको, उसको अपने दादाजी, कजन्स, गुरु, अपने रिलेटिव से, मतलब फिजिकली लड़ाई करनी थी। अब भगवान ने सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल क्यों लिया अर्जुन के केस में, है ना। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें भगवत गीता पढ़ाना चाहते थे ना, है ना। तो भगवान ने सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल क्यों लिया अर्जुन के केस का, क्योंकि वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, प्रभु हमें कुछ समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं, कि अगर अर्जुन अपनी जिंदगी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी भगवान का, भगवत गीता का ज्ञान लेकर अगर वो जीत सकता है, अगर वो अपनी युद्ध में, अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो पाया, तो जो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, सोचो वो अर्जुन की लाइफ की कॉम्प्लिकेशन के सामने क्या है। हमें थोड़ी ऐसे किसी को, अपने किसी रिलेटिव्स को, किसी को ऐसे फिजिकली हर्ट करना है। आप खुद सोचो, हमारे किसी से कुछ बात हो जाती है, किसी रिलेटिव से, किसी फैमिली मेंबर से, तो हमें कितनी टेंशन रहती है, कितने दिन, कितने महीने, कितने सालों साल हम ये हर्ट को अपने अंदर लेकर रखते हैं कि मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया या मैंने किसी को कुछ कह दिया, है ना। तो अर्जुन को तो अपने सारे रिलेटिव्स के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने दादाजी के साथ, अपने कजन्स के साथ, तो उसको फिजिकली लड़ाई करनी है, है ना। उसमें से एक ने तो जीतना था, या तो अर्जुन ने जीतना था या फिर दुर्योधन ने जीतना था, एक को तो हारना ही था ना। तो हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, वो अर्जुन की लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए हम सोचते हैं, एक स्केल बनाते हैं, 10 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, 0 इज द लीस्ट लेवल ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तो अर्जुन की प्रॉब्लम 10 पर है, तो हमारी प्रॉब्लम्स कितने में होंगी फ्रेंड्स, वो मुझे हमारी प्रॉब्लम्स कितने में होंगी। अगर अर्जुन की प्रॉब्लम 10 पर है, तो हमारी प्रॉब्लम्स कितने पर होंगी। कोई भी बात कर सकता है, पूजा जी आप बात,
जीरो लेवल कुछ भी नहीं है उनके आगे।
हाँ जी, तो अर्जुन की प्रॉब्लम 10 पर है, तो हमारी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स 1 या 2 पर होंगी, है ना। तो अगर अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, भगवान का भगवत गीता का ज्ञान लेकर, तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं दूर होंगी फ्रेंड्स। और हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोच सोच के कितना दुखी रहते हैं फ्रेंड्स, कितना ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसे रहते हैं, और यहाँ तक ऐसा हो जाता है कि हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं सोच सोच कर, क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं सूझता, हमें समझ ही नहीं आता हम बात किससे करें, क्योंकि जिससे हमने बात करनी है उनका लेवल भी हमारे जैसा ही होता है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रेंड्स बहुत कम लोगों को होती है। तो भगवान ने अर्जुन की सिचुएशन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ली, हमें समझाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम अज्ञान में होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम किसी की भी प्रॉब्लम सुनते हैं ना तो हमें क्या लगता है, नहीं यार मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है ना? लेकिन भगवान ने एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेकर हमसे ये मौका ही छीन लिया कि कहीं हम ये ना बोल दें कि अर्जुन की प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी थी लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। अभी हम आगे और समझेंगे कि अर्जुन की कितनी प्रॉब्लम्स थी, किन किन प्रॉब्लम से वो गुजरा था, और ये प्रॉब्लम खाली युद्ध क्षेत्र की प्रॉब्लम्स नहीं है फ्रेंड्स, अर्जुन की बचपन से लेकर उसकी प्रॉब्लम्स बहुत हायर लेवल की प्रॉब्लम्स से, बहुत स्ट्रगल से गुजरा था अर्जुन और सब पांडव, है ना। तो फ्रेंड्स हमें समझना है कि अर्जुन की लाइफ से रिलेट करना है हमें साइकोलॉजिकल, तभी हमें भगवद गीता हम समझ पाएंगे। तो अर्जुन हम ह्यूमंस को, एक मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो भगवान कृष्ण है वो तो भगवान है, परमात्मा है, भगवान ही एक ऐसे हैं जो परफेक्ट है, जिनमें कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। जीवन के इस जंजाल से, भूल भुलैया से, इस माया जाल से हमें वही निकाल सकते हैं जो इन सबसे ऊपर है, और भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं, मायापति ही निकाल सकते हैं हमें, है ना। तो जब हम अर्जुन से साइकोलॉजिकल लिंक करके ये समझेंगे कि अर्जुन की जिंदगी और हमारी जिंदगी कैसे जुड़ी हुई है, अर्जुन की लाइफ में भी स्ट्रगल्स हैं, हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल्स चल रही है ना। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी लाइफ में तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं चल रही है फिजिकली, है ना, और उसकी लाइफ में तो फिजिकली लड़ाई हो रही है, हमारी नहीं हो रही है, बट हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स तो चल ही रही है ना। रिश्तों में तनाव है, कई बार वर्क प्लेस पर भी इश्यूज हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह से फाइट है ना, चाहे घर में है चाहे बाहर है, और इस फाइट में, इस लाइफ में हम सब विक्टोरियस होना चाहते हैं, हम सब जीतना चाहते हैं। तो हम विक्टोरियस कैसे होंगे फ्रेंड्स, जब हम अर्जुन की तरह भगवान की शरण ग्रहण करेंगे ना? जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे है ना हम भगवद गीता का, तो उसमें श्लोक नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं अर्जुन कि भगवान मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप प्लीज मेरे गुरु बन जाओ और मेरी हेल्प करो ना? तो जब इस तरह का भाव जो अर्जुन का भाव है वो हमारे अंदर आएगा ना, जब हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे ना भगवान के साथ और हम्बल होकर चलेंगे फ्रेंड्स, एक्चुअली हमें ना क्लैरिटी नहीं है लाइफ में कि हमें जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, और क्लैरिटी तभी मिल सकती है जब हमें भगवान की गाइडेंस मिले। जब हम इस तरह का भाव रखेंगे तब हमें भगवत गीता समझ आएगी अच्छी तरह से फ्रेंड्स। अर्जुन के सामने बहुत बड़ा युद्ध था फ्रेंड्स, जिसके विषय में सोच सोच कर ही वो परेशान हो गए थे, मोह और भ्रम में फंस गए थे, है ना। तो इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं चैप्टर 2 के 7th श्लोक में, और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, और जिसके फलस्वरूप उन्हें ये भगवत गीता का ज्ञान मिलता है, और फिर वो इस शोकग्रस्त अवस्था से मुक्त हो पाते हैं और जीत पाते हैं अपने इस युद्ध को, है ना। तो जब हम इस तरह का भाव रखेंगे ना तब हमें भगवत गीता समझ आएगी फ्रेंड्स। जो इंसान भगवत गीता को सिंपल एक बुक की तरह पढ़ेगा एरोगेंस के साथ कि इसका बहुत दिमाग है और वो सब कुछ समझ लेगा, तो उसको भगवत गीता में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए पहले तो भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अपने प्रिय मित्र अर्जुन को क्यों सुनाई, क्योंकि उनमें गुण थे फ्रेंड्स, उनमें सद्गुण थे, उनमें वो डिवाइन क्वालिटीज थे, है ना, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक डिफरेंट लेवल का विश्वास और श्रद्धा रखते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको चूज किया ना कि भगवद गीता उनको सुनाई जाए। जिस तरह अर्जुन के मन में भगवान के प्रति डिफरेंट लेवल का विश्वास था, श्रद्धा थी, अगर हम भी रखें भगवान के प्रति, है ना, और इस दिव्य संवाद को हम श्रद्धा पूर्वक सुने, तो ऑटोमेटिकल है फ्रेंड्स, हमें कुछ जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो भगवान की कृपा से हमें भगवत गीता हमें समझ आसानी से आएगी, और हम इन जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं हम उन पे चल भी सकते हैं फिर, है ना। तो अर्जुन के दिल में भगवान के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, विश्वास था, जब हम भी उसी रिस्पेक्ट और श्रद्धा के साथ चलेंगे, विनीत होकर भगवत गीता सुनेंगे, तो हमें भी भगवत गीता समझ आएगी, है ना। और कई बार डिवोटीज को क्या लगता है भगवत गीता पढ़ते हुए कि जो सारी बातें भगवान बता रहे हैं श्लोकों में वो बहुत हाई लेवल की बातें लगती हैं, है ना, और उनको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स हमें ये समझना है पहले कि तो भगवान ने जो बातें बताई हुई है ना वो परफेक्शन की बातें हैं। अब वो भगवान है तो भगवान तो परफेक्शन की बात बताएंगे ना, क्योंकि वो खुद परफेक्ट है। जैसे परफेक्शन इज 100 और जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है 0 से, 0 से हम स्टार्ट हुए हैं और 100 इज द बेस्ट है ना। और हो सकता है कोई इस जर्नी के 15 में पहुंचा है, कोई 20 या 25 और कोई 50 पर पहुंचा है। तो अब जब भगवान परफेक्ट स्टेज के बारे में बता रहे हैं तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें ये समझना है कि हम उस स्टेज की ओर एक कदम कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़े उस तरफ। तो जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं फ्रेंड्स तो हम PhD की बातें समझ सकते हैं क्या एक दिन में, एक साल में भी नहीं समझ सकते है ना। तो जब हम 5th class में होते हैं फ्रेंड्स तो हम बस उतनी मेहनत करते हैं कि हम class 6th में पहुंच जाएं, और जब हम class 6th में पहुंचते हैं तो हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम 7th में पहुंचे है ना। तो फिर धीरे धीरे अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम हायर लेवल पर पहुंचते रहेंगे। तो भगवान ने जो बताया बातें वो सब हायर लेवल की बातें, बस हमें गोल पता होना चाहिए है ना। जैसे हम कॉलेज कर रहे होते हैं है ना, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो हमें पता होता है कि एक दिन हमें हायर स्टडी भी करनी है। अगर हमें जॉब करनी है तो हमें हायर स्टडीज करनी है ना, MBA करनी है, MA करनी है, MTech करनी है, और उसके बाद हमें जॉब मिलेगी। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए, मान लो मुझे MTech करनी है या MBA करनी है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा ना। धीरे धीरे 5th class क्लियर करनी पड़ेगी, 6th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th, ऐसे धीरे धीरे करके कॉलेज में जाऊंगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचूंगी है ना। तो एक सिस्टमेटिकली अप्रोच से हम आगे बढ़ते। तो वैसे ही भगवत गीता के ज्ञान में फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी में, वैदिक ज्ञान में भी हमें पेशेंस बनाकर सिस्टमेटिकली हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता के जो श्लोक है ना फ्रेंड्स वो हायर लेवल की बात करते हैं। और जो हम लोग होते हैं जो नए नए भगवत गीता सुनने लगते हैं या जो नए नए डिवोटी होते हैं, वो कुछ ही दिनों में उस परफेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। दुनियादारी में भी सिस्टमेटिकली अप्रोच करनी पड़ती है ना स्टडीज के लिए है ना। अब पहली क्लास में PhD की बातें समझ नहीं आती, उसी तरह हमें भगवत गीता के श्लोक भी धीरे धीरे जब हम चलेंगे, पेशेंस बनाकर रखेंगे, लेकिन लगातार अगर हम चलते रहें तो हमें ये श्लोक भी समझ आने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स है ना। उसके लिए उसको जो भी भगवत गीता में बताई जाती हैं बातें, जो भी नियम बताए जाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। जितना समझ आ गया उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए है ना, क्योंकि ये क्रमिक विकास की यात्रा है फ्रेंड्स। धीरे 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 चलते रहना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एक व्यक्ति हायर लेवल पर भी पहुंच जाता है। तो हमें सिस्टमेटिकली अप्रोच रखनी है, और अगर हम कुछ कुछ परसेंटेज में भी उस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हम स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और हमें ये लगेगा कि ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। अगर हम नित्य निरंतर लगातार नहीं चलेंगे, बीच बीच में आएंगे, बीच बीच में नहीं आएंगे है ना, तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। जब भी भगवद गीता कल स्टार्ट हो जाएगी है ना, तो आपको धीरे धीरे वाली अप्रोच नहीं रखनी है, आपको एक रजिस्टर रखना है, कॉपी पेन रखना है साथ में, और उनके नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि हमने आज सत्संग सुन लिया, उसके बाद मैंने 10 दिन के बाद भूल ही गए, कहीं चले गए, तो फिर उसके बाद स्टार्ट ही नहीं किया। कहीं भी आप जाते हो तो फ्रेंड्स आप एक मंथ तक स्काइप में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, या आपको आ भी जाती हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है पॉडकास्ट पे है ना, तो आप वहां पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। उसको छोड़ना नहीं है, मतलब धीरे 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 हमें उस तरफ बढ़ते जाना। और भगवान भी हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हम लोग 2 दिन में ये सब बातें अपने जीवन में उतार लेंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे, कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं है ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आने वाला है, और फिर हम फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, और हमें फिर क्या लगता है कि ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए कहा जाता है कि आप कम से कम एक कोर्स तो आप ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है, उसको अप्लाई करो जीवन, तो अपने आप ही आपको समझ आएगा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, मुझे इसमें आगे बढ़ने का फायदा है या नहीं फायदा है। आपको अपने आप ही अपने से आंसर मिलेंगे है ना। उसके लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से और निरंतरता से आगे बढ़ते रहना है। अगर आप ऐसे चलते रहोगे धैर्य व निरंतरता से, तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में भी PhD कर पाओगे है ना। तो भगवत गीता में क्लैरिटी देती है फ्रेंड्स कि लाइफ में करना क्या है, कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करें, कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करें, कैसे अपनी लाइफ में पेशेंस लाएं, कैसे बेहतर इंसान बने, कैसे खुश रहें, कैसे हम इतने पॉजिटिव रह सकते हैं कि अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से चलाएं, अपने परिवार की भी मदद करें और पूरे समाज की भी मदद करें है ना। वासुदेव कुटुंबकम, हमेशा भगवान कहते हैं, भगवान के तो सब बच्चे हैं, उनकी भी हम कैसे मदद करें हम सब मिलकर है ना। और ये सब होगा सिस्टमेटिकली है ना, और हमें अपनी ग्रोथ को परसेंटेज में देखना पड़ेगा कि अगर मैं 0 से शुरू हुई हूँ तो अगर मेरे को 6 महीने हो गए हैं सत्संग अटेंड करते हुए, तो मेरी ग्रोथ कितने परसेंट बढ़ी है या वहीं पे खड़ी हूँ मैं 0% पे। अपनी ग्रोथ आपको खुद ही असेस हो जाएगी फ्रेंड, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़नी है ना। और अगर आप पॉजिटिविटी में बेशक 1%, 2%, 5% बढ़ते जा रहे हो ना, और अपनी नेगेटिविटीज को परसेंटेज में घटाते जा रहे हो, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी कि मुझे भगवद गीता पढ़ने का मुझे क्या फायदा मिला, मेरी लाइफ पहले से बेटर हुई है या नहीं हुई है, कि मैं वहीं पे खड़ी हूँ 0 पे ही, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या, एक कोर्स सुनना है, सोच लेना ना, मन में बिठा लो एक बात कि मुझे सुनना ही सुनना है, मुझे एक बार तो भगवत गीता पढ़नी ही चाहिए। मेरे माइंड में गया था मुझे तो एक बार भगवत गीता पढ़नी ही पढ़नी है, कि क्या बता रहे हैं उसमें भगवान, क्या बताते हैं, ऐसे क्या बातें लिखी हुई हैं जो इतनी फेमस है ये बुक। और वैसे भी मुझे लगता था कि अपने धार्मिक ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए कम से कम, और नहीं कुछ तो भगवत गीता तो हमें पढ़नी चाहिए, है ना। मैं एक बार सुनने के लिए जुड़ी थी और आज तक मतलब मेरे लाइफ का पार्ट है ये भगवत गीता। तो इस मॉडल से अगर हम भगवत गीता को समझेंगे तो हम ज्यादा प्रैक्टिकली समझ आएगी हमें सारी बातें, और अपनी जिंदगी में भी उतारने में मदद मिलेगी, है ना। और प्रेयर्स के रोल को नहीं भूलना फ्रेंड्स हमें, है ना। प्रेयर्स बहुत पावरफुल है। कई बार हम लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं फ्रेंड्स कि हमें लगता है कि हम किससे गाइडेंस लें, और आजकल तो कलयुग चल रहा है, इतने सारे लोग गुरु बन गए हैं, चीटिंग चलती है ना। तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, भगवान के कैमरे हर जगह फिट हैं। आप गाइडेंस वहीं से ले जहां से आपको सही में सही लगता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो भगवान से, प्रेयर्स कर सकते हो कि भगवान प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, है ना। आप खुद भगवान का नाम ले सकते हो, आप भगवत गीता तो पढ़ना शुरू कर सकते हो ना, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस की जरूरत है। आप भगवत गीता को खुद से पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, है ना। या ये जो सत्संग आपने ज्वाइन किया है इसको रेगुलर लगाइए, है ना। तो अगर आप पढ़ोगे भगवत गीता और साथ साथ में हरिनाम भी करते रहोगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्योरिटी आ जाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अगर बार बार अभ्यास करता है भगवान के नाम का, नाम जाप का, तो क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है फ्रेंड्स, है ना। अंदर प्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है, अंदर बुद्धि शुद्ध हो जाती है हमारी, तो हमें भगवत गीता ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाती है, है ना। और एक बुद्धिस्ट ने कहा भी था कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो जैसे जैसे आपकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली जो गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ना, तो भगवान विल ऑर्गेनाइज दैट, भगवान अपने आप ही ऑर्गेनाइज कर देंगे आपके लिए। क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं फ्रेंड्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो हमें शुरुआत तो कहीं से करनी है ना, तो क्यों ना हम भगवद गीता पढ़कर हम शुरुआत करें। और भगवद गीता को समझने के लिए फ्रेंड्स हमें भगवान के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने भगवद गीता को समझने के लिए आसान वक्त का इंतजार नहीं किया था, है ना। और ये तभी हो सकता है कि जब हम ये समझें कि अर्जुन की तुलना में हमारी समस्याएं फ्रेंड्स ना के बराबर है, है ना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब समय आसान हो जाएगा ना, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी कुछ टेंशन्स हैं, बच्चों को सेटल करने की बिजी हूँ, है ना, अभी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं घर में, या फाइनेंसेस कम है, है ना, मेरी बेटी की एडमिशन नहीं हो रही है, अभी मैं समय नहीं बना पा रही हूँ, तो क्या इस अप्रोच से हम कभी भी भगवद गीता समझ पाएंगे, या हमें अर्जुन की अप्रोच से हम समझ पाएंगे, है ना। अर्जुन के जीवन में जब भगवद गीता का ज्ञान मिला, तब सबसे ज्यादा मुश्किल वाला समय उसका चल रहा था, और वो मुश्किल समय फ्रेंड्स 1-2 साल से नहीं चल रहा था, वो बचपन से ही चल रहा था, है ना। तो थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं। अर्जुन का जन्म जब हुआ था ना, तो उसके पिताजी शरीर छोड़ चुके थे। हमें अपने लाइफ के चैलेंजेस को अर्जुन के लाइफ के चैलेंजेस से कंपेयर करना है फ्रेंड्स। पांडवों का जन्म जब हुआ तो उन्होंने अपने फादर को देखा ही नहीं, मतलब उनके फादर नहीं है, वो शरीर छोड़ चुके हैं। राजाओं के घर में उनका जन्म होता है तो उनके तायाजी और उनके बच्चे जो हैं उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, उनको बचपन से ही टॉर्चर मिलना शुरू हो जाता है। और प्रॉपर्टी तो उनकी होती है, बट उनके साथ सौतेलेपन वाला बिहेव किया जाता है, उनको उस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, है ना। बचपन में खीर में जहर मिलाकर दुर्योधन पांडवों को मारने का प्रयास करता है ना, जब वो गुरुकुल में पढ़ने गए होते हैं, उसमें देखा होगा अपने महाभारत में, है ना। फिर लाक्षागृह में उनको वनवास में भेज दिया जाता है, फिर लाक्षागृह में ही घर के अंदर जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, और हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, है ना। 13 साल उनको वनवास भेजा गया था फ्रेंड्स, है ना। हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार ने हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया, और यहाँ देखो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मारने की कोशिश तक की जा रही है। आसान सिचुएशन नहीं है फ्रेंड्स, ये सारी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं पांडवों की। अपने से कंपेयर करके देखो ना इन सब चीजों को, तब हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। एक स्टोरी की तरह मत देखो इसको, अपने से कंपेयर करो कि मेरी डिफिकल्टी का लेवल कहाँ पे है और पांडवों की डिफिकल्टी का लेवल कहाँ पे है ना। ये लाइफ की वर्स्ट चैलेंजेस है, टेंपर है, और इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स जो इनके साथ हो रहा है। फिर उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया जाता है उनके ही देवर दुशासन द्वारा। द्रौपदी के लिए यह क्या छोटी बात थी, लाइफ का वर्स्ट चैलेंज था ना। और भगवत गीता आपको तभी समझ आएगी फ्रेंड्स, मतलब जब आप इस दुनिया में मैं और मेरा जीवन, अपने वही चार व्यक्ति को देखना है ना, इन सब से ऊपर उठोगे ना तो आपको तभी भगवत गीता समझ आएगी। जब तक आप मेरा करते रहोगे ये सब बातें कुछ समझ नहीं आने वाली है। तो समझने की कोशिश हमें करनी है कि पांडवों के जीवन में हुआ क्या है। जब आप उनकी कठिनाइयों को समझोगे, उनकी चैलेंजेस को समझोगे, तो आपको समझ आएगी कि मेरी लाइफ के चैलेंजेस तो ना के बराबर है फ्रेंड्स। और युद्ध करने का ये डिसीजन तो पांडवों का नहीं था ना, उनको ना कोई शौक था इस चीज का। और भगवान श्री कृष्ण ने भी पूरी कोशिश की कि युद्ध ना हो, है ना, क्योंकि वो संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन को कहा, सारे कौरव बैठे हुए थे वहां पे पूरी सभा में, है ना, तो उन्होंने कहा कौरवों को कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी मैं मना लूंगा पांडवों। तो उन्होंने क्या कहा, दुर्योधन ने क्या कहा था, हम 5 गांव तो क्या, एक तिनका भी नहीं देंगे, एक घास का तिनका भी नहीं दूंगा मैं उनको, है ना। तो पांडवों को सबके साथ, अपने कजन ब्रदर्स के साथ, अपने दादाजी गुरुओं के साथ लड़ाई करनी थी फिजिकली, है ना। और अगर हमें कुछ आर्गुमेंट भी हो जाते हैं अपने रिलेटिव के साथ, तो हमारा कितना स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में। और वहां अर्जुन को फिजिकली मारना है अपने रिलेटिव्स को, है ना। करण उनका रियल ब्रदर है, मतलब कम से कम महाभारत तो आपको पता ही होगी ना स्टोरी, नहीं पता तो आप प्लीज, आजकल तो स्मार्ट टीवी है, कम से कम महाभारत जरूर आप देखो ताकि आपको कम से कम चीजें समझ तो आए, रिलेशन तो समझ आए किसी का किसके साथ क्या रिलेशन था, है ना। स्टोरी तो हमें समझ होनी चाहिए ना, रामायण महाभारत तो कम से कम हमें पता ही होनी चाहिए, है ना। तो आजकल स्मार्ट टीवी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, रोज के 1-2 सीरियल आपको टीवी देखने का शौक है तो आप घर में लगाओ और अपने बच्चों को भी दिखाओ, है ना, तो तभी ये बातें समझ आएंगी ना जो मैं बोल रही हूँ आपको। आप ये सब देखोगे ये सारी बातें। करण उनका रियल ब्रदर है, दुर्योधन दुशासन उनके ताया जी के बेटे हैं, उनके कजन ब्रदर्स हैं, और भीष्म पितामह जी उनके दादाजी हैं, द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, है ना। तो इन सब लोगों के साथ अर्जुन को युद्ध करना है। और मेरी और अपनी सिचुएशन के साथ कंपेयर करो, हमें कैसे इस सिचुएशन से गुजरना है क्या, तो इस समय वो क्या अप्रोच लेता है, क्या डिसीजन लेता है, जब वो डाउन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो वो क्या ये बोलता है कि मैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सोच लेता हूं पहले, फिर इसको सॉल्व करता हूं। या फिर वो और कहता भी है चैप्टर 2 के 7 श्लोक में कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हे कृष्णा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे अपनी शरण में ले लो और आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है ना। तो वो प्रभु की शरण में जाता है, उनका उपदेश सुनता है, भगवत गीता का ज्ञान सुनता है। और ये अर्जुन ये उपदेश युद्ध क्षेत्र के मैदान में सुन रहा है, जहां कौरवों और पांडवों की उस समय की वर्ल्ड वॉर चल रही है फ्रेंड्स। दोनों सेनाओं के मध्य भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ आगे बढ़ता है, और वहां जाकर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने हथियार डाल देता है, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां वो बोलते हैं कि हे प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, तो मोह में आ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। तो वहां से भगवत गीता बताई जा रही है ना। और वहां भी भगवत गीता सुनाने का ये कारण था क्योंकि भगवान को पता है हम सब बहुत भान्यबाज है, हमें बहुत भान्यबाजी आती है। अगर भगवान ने शांति के माहौल में भगवत गीता सुनाई होती ना अर्जुन को, तो हम बोलते कि उसकी लाइफ तो कितनी आसान थी, वो तो एक राजा था, है ना, उसकी लाइफ तो कितनी आसान थी और मेरी लाइफ तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे कैसे हो सकता है भगवान। हम भगवान से भी आर्गुमेंट करने से परहेज नहीं करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए तो अर्जुन ने सुन ली भगवत गीता, इसलिए भगवान ने सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भगवत गीता सुनाई अर्जुन को। और हमारे भाने क्या होते हैं, हम तो बड़ी टेंशन में है, हमसे ज्यादा प्रॉब्लम तो किसी को है ही नहीं है, हमारे लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है ना, फिजिकल प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटिव्स की प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, बचपन से लेकर डिफिकल्टीज हैं उसकी लाइफ में, बचपन से लेकर बड़े होने तक उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स हैं, है ना। इससे ज्यादा क्या डिफिकल्टी होगी किसी के जीवन में फ्रेंड्स, कि भगवत गीता सुनाई फिर भगवान ने ऐसी सिचुएशन में। और अर्जुन ने ये अप्रोच ली कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, है ना। तो अब हमें अपनी प्रॉब्लम्स को अर्जुन और पांडवों की प्रॉब्लम से रिलेट करना है। महाभारत देखनी है, अगर नहीं देखी है तो उस सीरियल को देखो, है ना, और मंथन करो गहराई से। हम यहाँ छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, फालतू बातों का मंथन चलता रहता है हमारे मन। और पांडवों के रिश्तेदारों ने देखो उनके साथ क्या क्या किया, थोड़ा विचार करो, है ना। और हमें एक दिन बोला जाए ना कि हमें एक दिन अपने घर में नहीं सोना है, तो हमें टेंशन हो जाएगी कि हमें कहाँ पे सोना है, बाहर कहाँ पे सो लूंगी मैं, सड़कों पे कहाँ पे रहूंगी, है ना। सोचो आसान है ये, रिलेट करो ना अपनी लाइफ को अर्जुन के लाइफ से, रिलेट करो, सारे जवाब मिल जाते हैं फ्रेंड्स। हमें ये भी मुश्किल लगेगा एक रात बाहर बिताना और एक रॉयल फैमिली के बच्चों को जंगल में भेज दिया जाता है वनवास के लिए, क्या क्या हो चुका है उनके साथ। और हम क्या लोग सोचते हैं, मेरा जीवन बहुत मुश्किल है, मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल सहे हैं, यही टेप चलती रहती है हमारी कंटिन्यूसली हमारे अंदर, है ना। तो अगर भगवत गीता समझनी है ना, तो सबसे पहले अर्जुन की लाइफ को समझिए। पहले अर्जुन में बहुत सारी क्वालिटीज थी फ्रेंड्स, बहुत सारे डिवाइन क्वालिटीज थी, बहुत सारे सद्गुण थे कि भगवान ने चूज किया उसको कि भगवत गीता इसके जीवन में आनी चाहिए, है ना। तो हमें फालतू दुनियादारी की बातों को बाहर निकालना है और अंदर अपने डिवाइन क्वालिटीज है ना, वो अंदर हमारे होनी चाहिए, तब भगवत गीता में समझ आनी शुरू होनी है, है ना। पांडव के साथ सोचो क्या हुआ, कुंती के साथ देखो, द्रौपदी के साथ देखो क्या क्या हुआ है, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करो और अपनी परेशानियों के साथ फिर उसका कंपैरिजन करो और फिर ये समझो कि हम अपनी समस्याओं के बीच में क्या अप्रोच लेते हैं जीवन में। हम लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के नशों के चक्कर में पड़ जाएंगे, कोई ड्रिंक्स का नशा, कोई सिगरेट का नशा, कोई ऑपोजिट सेक्स का नशा, अलग अलग प्रकार के नशों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, है ना। फ्रेंड के साथ फालतू के निंदा चुगरी के नशे या फिर शॉपिंग के चक्कर में फंस जाएंगे, है ना। हम असली काम नहीं करते जो अर्जुन ने किया, भगवान की शरण में जाना। अब ये थोड़ी कि हम भगवान के पास जाते हैं रोज के एक एक घंटा बैठते हैं वहां पे, अपनी हमारी जो डिजायर्स की लिस्ट है वो भगवान के आगे पढ़ते हैं तो हम भगवान की शरण में चले गए, ये मतलब नहीं होता भगवान की शरण में जाने। अरे हम तो जाते हैं, हम रोज तो जाते हैं भगवान की शरण में, ये क्या बोलते रहते हैं भगवद गीता में कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। हम तो बचपन से जा रहे हैं भगवान की शरण में, तो रोज एक घंटा बैठती हूँ वहां पे, अपनी एक लिस्ट बताती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, अब बाकी का जीवन अपना मनगढ़ंत जीवन जीती हूँ, ऐसा जीवन जीती हूँ मैं, है ना। भगवान की शरण में जाना मतलब जो टीचिंग्स उन्होंने दी है ना उनको अपने जीवन में उतारना, जो किताबें हम वहां पढ़ते हैं ना उनको अपने जीवन में उतारना, ना कि भगवान को सुनाना वो किताबें। कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुख आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, लेकिन ये अंदर विश्वास होना कि बैठे हैं ना वो, मुझे क्या टेंशन है, बैठे हैं परमात्मा, इतनी सारी सिचुएशन में मेरे को निकाल लिया, तो ये छोटी सी सिचुएशन में मैं अगर फंसी हुई हूँ तो यहाँ से भी निकाल लेंगे वो, ये विश्वास होना चाहिए। इतना हायर लेवल का आपको श्रद्धा और विश्वास होने चाहिए फ्रेंड्स भगवान पे, तो उसको बोलते हैं भगवान की शरण में जाना। कुछ भी हो जाए, कितना ही हायर लेवल का दुख आ जाए आपको, लेकिन विश्वास क्या, बैठे हैं वो, मुझे क्या टेंशन है, उनको टेंशन है। जब हम अपने टेंशन छोड़ देते हैं ना, उनको बोल देते हैं आपको पता है, मेरे को नहीं पता, आपको ही पता है ये सब बातें, आपने निकालना है मुझे इस सिचुएशन से, तो फिर वो ले लेते हैं हमारी टेंशन। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, अपनी लाइफ खुद ही लगे होते हैं सुधारने के लिए, है ना। मतलब कि करते कुछ नहीं हम, लेकिन टेंशन लेना है ना, लेकिन हम भगवान के शरण में नहीं जाते, है ना। और जब अर्जुन भगवान के शरण में गया तभी उसको भगवद गीता समझ आई और वो अपना चैलेंज से वो बाहर निकल पाया और जीत भी पाया। ये याद रखना फ्रेंड्स, वो भगवान की शरण में गया और एट द एंड वो विक्टोरियस हो पाया, है ना। तो हमें विनम्रता के साथ भगवत गीता का ज्ञान सुनना है, ईश्वर पर पूरा फेथ रखना है, कुछ समझ आ गया थैंक यू कि भगवान मैं तो इतना भी डिजर्व नहीं करती थी, ईगो में नहीं चले जाना है ना, भगवान की कृपा माननी है कि मैं ये चीजें समझ पाई, है ना। और भगवत गीता के कोर्स में कुछ समझ नहीं आया तो ये बहुत नॉर्मल बात है फ्रेंड्स, बड़े बड़े महात्माओं को भी भगवत गीता समझ नहीं आती है ना। पहली बार पढ़कर क्या हमें केमिस्ट्री और बायो की बुक्स समझ आ जाती थी, तो ये एक्सपेक्टेशंस बनाकर चलना कि पहली बार में ही मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा, भगवत गीता समझ आ जाएगी, ये वाली एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है। अगर समझ आ गई तो थैंक यू प्रभु, अगर नहीं समझ आए तो मैं कोशिश करूंगी, दोबारा से फिर सुनूंगी, है ना, कॉपी पेन से नोट्स बनाऊंगी अपने, बार बार सुनूंगी, है ना। थोड़ा सा समझ आ गया बस झुक जाइए भगवान के चरणों में कि आपकी कृपा से मैं समझ पाई हूँ, और अगर समझ नहीं आई तो क्या सोचना है कि मेरी ही कोई कमी है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस हमें रिस्पेक्ट रखनी है भगवान के लिए और भगवत गीता के लिए और अपनी डिफिकल्टीज को पीछे रखना है, सोचते नहीं रहना उसके बारे में, है ना। अब अर्जुन ने देखो क्या अप्रोच ली, उसने डिफिकल्टीज को खत्म करने की वेट नहीं की ना, डिफिकल्टीज के बीच में ही, अपने स्ट्रगल्स के बीच में ही उसने कहा हे प्रभु मैं कुछ नहीं संभाल पाऊंगा अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, पहले मैं आपकी बात सुनता हूँ यानी कि आपके साथ सत्संग करता हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे लाइफ में जीना कैसे है। उसने ये अप्रोच ली, है ना। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम भी अर्जुन की तरह भगवद गीता पढ़कर उसको समझ कर उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, और साथ साथ में जो भी हमें बताया जाता है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें बताई जाती हैं, उसको अपने जीवन में हम उतारें, है ना। अगर हम ये दोनों चीजें, मतलब भगवद गीता पढ़ना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगर हम साथ साथ में करते रहेंगे तो हमारी ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी फ्रेंड्स। इसमें किसका फायदा होगा? ना मेरा फायदा होने वाला है, ना निखिल जी का फायदा होने वाला है, ना गोलोक एक्सप्रेस का फायदा होने वाला है ना, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। अगर भगवद गीता मैंने पढ़ी, मुझे समझ आई, तो मेरा ही फायदा हुआ ना, मेरी लाइफ बेटर हुई, है ना। तो आपको समझ आएगी तो आपका फायदा होगा, है ना। तो इसका ये मतलब है कि हम अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी से, हैप्पीनेस से लीड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, और अपने समाज को भी बेहतर बनाने में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरी बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं आगे, कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना दी, आज का सत्संग भी बहुत आनंददायक था। पिछले 2 महीने हो गए हैं तकरीबन आप भागवत गीता से पहले जो तैयारी करनी है ना, जैसे मान लो मकान बनाने से पहले जो हम तैयारी करते हैं ना, वो बता रहे हैं उसके बारे में। तो जो पिलर डाल रहे हैं ना, वो जैसे कि 4 पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है ना, ABCD मॉडल। तो बाकी क्या ये नेसेसरी है कि हमें घर को छोड़ना है डिवोशन के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बताई हैं ना, कि आप भगवत गीता पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये पिलर डाल रहे हैं। ये वो चीज़ है जैसे कि हम मकान बनाने से पहले की तैयारी करते हैं। तो आज का बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं था, इवन देन भी जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया वो ये कि यदि हम प्रभु के साथ श्रद्धा विश्वास और प्रेम रखेंगे ना, तभी ये हमें भगवत गीता समझ में आने वाली है। जैसे कि जैसे मकान बनाते हैं ना, तो हम छत के ऊपर लेंटर डालते हैं ना, तो जैसे एक लोहे की सरिया डालते हैं, एक वर्टिकल और एक जो मेसन डालते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। फिर जैसे श्रद्धा जो है हॉरिजॉन्टल डाली है, विश्वास डाली है, और उसको प्रेम के धागे से बांध देने कि हमने प्रभु के प्रति शरणागत होकर ये अंदर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं बिल्कुल अनजान हूँ और आपने ही मुझे ये सारी बातें समझानी है। और जब हमें विश्वास हो जाएगा ना, हमें प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली हमें हरेक जो चीज़ है ना, वो इतना आनंद देगी और इतना मतलब समझ आने लग जाएगी कि बस पूछो ही मत। जैसे अर्जुन को जो भगवत गीता प्रभु श्री हरि ने सुनाई ना, वो उस समय जबकि वो उसके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। तो अगर जैसे अर्जुन भी शरणागत हो गया था प्रभु के, समर्पण का भाव उसमें आ गया था कि प्रभु मैं तुम्हारे पे समर्पित हूँ तुम्हारे पर, और तुमने ही मुझे इस डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकालना है। तो जो श्री हरि है ना, वो डेफिनेटली निकाल ही देते हैं। तो इसके लिए जो कुछ बातें जो हमने अपने दिमाग में रखनी है ना, सोच लेना है कि हमने एक ओवर थिंकिंग नहीं करनी, उसको छोड़ ही देना है कि हम वैसे पुराने अपने परिवार के बातों में पड़े रहते हैं, खींचते रहते हैं उनको, दुनियादारी की बेकार की बातों को छोड़ देना। तो श्री हरि भी ना हमें जो एडवर्स जो सिचुएशन होती है ना, उससे डेफिनेटली अगर हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, तो वो निकाल ही लेते हैं। और हमें प्रभु के साथ विनम्रता का भाव भी रखना, विनम्र होकर प्रार्थना भी हमेशा करती रहनी है कि प्रभु हमें आप ये जो भागवत गीता समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो समझाएंगे भी, और ये हमारी जो प्रभु के साथ प्रेम होगा ना, उसके साथ वो हमें धीरे धीरे समझ भी आ ही जाएगी। आपने एक लाइन बोली थी एंड में, मैं वो लाइन फिर से रिपीट करूँगी। कहते व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर इज देयर। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि व्हेन द डिवोटी ऑल द डिवोटी आर रेडी टू लिसन, तो देन मोना जी इज देयर टू मेक अस अंडरस्टैंड। बस ये सोच के चलो कि वी हैव नॉट टू मिस एनी क्लास या एनी सत्संग, तो डेफिनेटली ये समझ में आएगी। और जैसे जैसे डॉटेड लाइन मोना दी बताते जा रहे हैं ना, तो मैं जो नए डिवोटी इस ग्रुप से जुड़े हैं ना उनको कहूँगी कि डॉट बताते जा रहे हैं मोना दी, बस आपने उन डॉट को एक दूसरे के साथ मिलाते जाना है, तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअलिज्म की जो लाइन है ना वो श्री हरि के चरणों तक पहुंच ही जाएगी। हरी हरी बोल मोना दी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज कुमार जी, ब्यूटीफुली आपने पूरे सत्संग को अच्छे से रिवाइज कर दिया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वही बात ना कि सारे जो मिसकंसेप्शंस जो हमने किए हैं या फिर जो गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल्स किए हैं या जो आज का टॉपिक किया है, तो इससे क्या होता है ना एक्चुअली हमारा मन वही है ना, हम फालतू बेकार जैसे आप बता रहे हो बेकार की बातों में उलझे रहते हो, है ना, उसने बोल दिया ये कर दिया घर की बातों में, मतलब हर वक्त हम बातों का अंदर जंजाल अंदर बुना होता है मन और उसी में ट्रैप होते हैं, हमारा माइंड उसी में गुस्सा होता है ना, और इतनी एज हमारी निकल गई और इससे ज्यादा निकल जानी थी, कुछ नहीं होना था, क्या होना था, वहीं पे वहीं फंसे रहना था जहां पे आज हम 3-4 साल पहले थे, है ना। तो भगवत गीता जीवन में आई तो कुछ लग रहा है ना लाइफ में कुछ तो क्या बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। जैसे तो मतलब मैं अपने कंपेयर करूँ 2070 या मान लो 2020 से पहले को कंपेयर करूँ मैं, क्योंकि सिंसेरिटी से मैं भी 2020 में ही चली। मैं एक बात बोलूँ आपको कि मेरे को उस वक्त तो सुनना अच्छा लगता था, पहले तो 1-2 साल मैंने से सुना है, कुछ भी अप्लाई नहीं करती थी मैं, फ्रेंड्स सुनना बहुत अच्छा लगता था, बस सुनती रहती थी भगवत गीता या यूट्यूब पे कितने सारे चैनल्स को सुनती रहती थी, ये स्पिरिचुअल नॉलेज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था, टीवी पे भी यही चलता रहता था मेरा, और मतलब दिन रात मैंने आप बोल सकते हो मेरे को, मतलब मैं 12-13 घंटे मैंने इन चीजों में लगाए हैं, है ना। तो मतलब फिर वही बातें ना, ये बातें हमारी फिर बुद्धि को शार्प करती है, उपजाऊ बना रही है मतलब हमारी बुद्धि को, कि ये जो भगवान की बातें हैं जो इतनी हाई लेवल की बातें हैं फिर घुसना शुरू होती है। तो इसलिए ये सारी बातें सुनना बहुत जरूरी था, ताकि मतलब 1-2 महीने का हमारा थोड़ा सा गैप रहे और हम भगवत गीता को इसको अच्छे से समझ पाए और अपना पाए। मेन मोटिव है कि जो भी नए डिवोटीज जुड़े हैं वो उनका जीवन बेटर हो सके पहले से, चाहे मैं ये नहीं बोल रही हूँ अभी बेटर नहीं है, बहुत बेटर लाइफ होगी, लेकिन इससे भी बेटर हम जा पाए, है ना, क्योंकि परफेक्ट तो हम है नहीं है, सिंपल बात है, भगवान के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो हमें भगवान की उस परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, है ना। भगवान कहते हैं, यही तो कह रहे हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम भी कर सकते हो, मैं ऐसे अपनी लाइफ ऐसे जीता हूँ तो तुम क्यों नहीं जीते, ऐसे तुम क्यों ऐसे फालतू चीजों में ऐसे नेगेटिविटीज में के ट्रैप में फंसे हुए हो, है ना। तो वो चीजें हमें समझ आएंगी और अपना माइंड बिल्कुल खाली हो जाएगी, कोई मतलब वरीज नहीं, कोई विचार नहीं अंदर, खाली कुछ नहीं, शांति, शांति के अलावा कुछ नहीं होता है मतलब फ्रेंड्स, है ना। अगर आपने 2-3 साल लगा लिए ना, सच में जो मैं बोल रही हूँ ना, जो हमारे पुराने डिवोटीज हैं जैसे ये कुमार जी जो आपको बोल रहे हैं, ये सेकंड रीडिंग में जुड़े, वो भी शायद 6-7 चैप्टर था ना आपका कुमार जी।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी मोना जी,
6-7 चैप्टर, हाँ जी ना, पूरी सुनी नहीं है, मतलब 6-7 चैप्टर से, हाँ जी हाँ जी 6-7 चैप्टर से वो जुड़े थे, है ना। तो वो मतलब इतने महीनों में इनके जीवन में इतना बदलाव आ सकता है, तो फ्रेंड्स आपके जीवन में भी आ सकता है, हम सबके जीवन में ऐसे ही बदलाव आया है धीरे 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 करके, है ना। एकदम तो किसी की बुद्धि इतनी शार्प नहीं होती है, है ना। तो अगर हम बिना किसी तर्क वितर्क के चलेंगे, शांति से सुनेंगे कि भगवान की बातें हैं, है ना, और किसी को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारा जीवन बेटर होगा, सिंपल बात है, है ना। तो अपने आप ही ये चीजें समझ आती है और अप्लाई भी हो जाती है जीवन में, है ना। थैंक यू सो मच कुमार जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना जी। मोना जी आज का सच में आज का सत्संग बहुत ही बोलते हैं ना अमूल्य, कि भगवत गीता क्या है, आपने समझा रहे थे कि भगवत गीता क्या है। तो मैं भी 2017 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी, तो वही बात है कि स्टार्ट में कुछ समझ नहीं आता, ठीक है सुनते थे 1-2 लाइन बोलते भी थे, लेकिन मतलब क्लियरिटी किसी चीज की नहीं होती थी। लेकिन जब फिर मैंने आपका सेशन शुरू किया, सेशन मैंने शायद 2020-21 स्टार्ट में किया था आपका, कौन सा सन में था मोना जी? 2020 तीसरा सेशन है शायद आपका ना, ये
2020 में शुरू हुआ था ना, पर आपने शायद 2021 में स्टार्ट किया था शायद 5-6 महीनों बाद, है ना,
2-3 महीने, हाँ शायद। तो उसके बाद मैंने नोट्स बनाना शुरू किए थे, तो जैसे आपका सेशन सत्संग जब खत्म हो जाता था तो उसके बाद मैं अपने नोट्स पढ़ती थी, तो नोट्स बनाने का ये फायदा मेरे को ये फायदा हुआ कि हर बात ना क्लियर होती थी जब आपसे सुनते थे, उसके बाद नोट्स पढ़ने तो बड़े ध्यान से आराम से बैठ के पढ़ने, तो उसमें समझ आती थी कि मतलब हमने क्या सुना है और आपने हमें क्या समझाया है। इसमें भगवद गीता में प्रभु जो है वो अर्जुन के माध्यम से हम सबके क्वेश्चन, हमारे अंदर बहुत क्वेश्चन चलते थे जब सेशन होता था, हमारे अंदर बहुत क्वेश्चन चलते थे, तो परमात्मा श्री हरि ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को माध्यम बनाया और हमें सारे ही क्वेश्चन के आंसर दिए। हमें उसमें ये पहली बात ये समझ आई कि हमें भक्ति के साथ अपने जो भी कर्म करने हैं वो भक्ति के साथ करने हैं, डिवोशन को अपने फ्रंट में रखना है और फिर कर्म करने हैं। किसी भी फील्ड में अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो हमें चलना बहुत जरूरी होता है। और इसमें जो टॉप लेवल के डिवोटी हैं, प्रभु उनकी बात कर रहे हैं जिनकी आत्मा प्योर है और जो ये समझ जाता है कि प्रभु के लिए प्रेम से ही हमें मुक्ति मिलेगी। और हमें लगता है कि जैसे हमें तो हमेशा ऐसे लगता था जब हमने भगवद गीता नहीं पढ़ी तो हमें हमेशा लगता था कि दूसरा व्यक्ति हमारे से ज्यादा खुश है और हम बहुत सी चीजें ऐसी करते थे खुद को खुश करने के लिए, लेकिन वही हमारी गड़बड़ हो जाती थी। खुशी तो हमें तभी मिलेगी जब हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ होगा और हम जब प्रभु को अपने साथ लेके चलते हैं तो हम जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र से भी बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर बैठे हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है। हो सकता है कि हमारे भी थोड़े से डिवाइन अकाउंट खुल गए हैं, लेकिन वो है बात ये है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है जो भी हम आप हमें समझाते हैं बताते हैं भगवद गीता से, हम जो सीख रहे हैं उसको हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, इसमें ही हम गलती करते हैं। हम बोलते हैं ना जैसे रोबोट बन गए हुए हैं कि अपने मन की बात हमें अपने मन में सोचते रहते हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन जो सही बात है उस सही रास्ते पे नहीं चलते, क्योंकि अगर हम अपने मन से राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें हमेशा राइट आंसर मिलता है। हमें डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में आने से पहले हमें अपने टाइम की भी मैनेजमेंट करनी है, इसके लिए हमें अपनी आपने बताया ना लिखने की आदत डालनी। मैंने तो डाली है, मैं तो जरूर लिखती हूँ, अभी भी आप बोल रहे थे तो मैं मतलब पॉइंट लिखती हूँ, जरूर लिखती हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, बोलते हैं ना रिटर्न, जब आप कोई भी चीज रिटर्न में करते हो वो आपको याद रहती है, तो हमें लिखना चाहिए। और हमें जो बोलते हैं ना जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है उसको सबसे पहले करें, इससे हमारे अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारा मन कभी भी नहीं भटकता, क्योंकि हमारा मन ही हमें भटकाता है। और जब हम ड्यूटी समझ कर कोई भी टास्क करेंगे परमात्मा की, जैसे बोलते हैं ना भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, परमात्मा को याद, हर चीज में परमात्मा को याद करना, तो इससे हमारे माइंड की भी ट्रेनिंग होती है और सक्सेस हमारी हमेशा आगे रहेगी। तो सच में भगवद गीता पढ़ने से अंदर से हमारी इतनी बोलते ना इंसान बिल्कुल एक प्योर सोल बन जाता है और उसका परमात्मा के साथ कनेक्शन बनता है। हरी
हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपने अच्छी तरह से समराइज कर दिया उमा पूरा सत्संग, और बिल्कुल सही कहा कि हमें कॉपी पेन लेकर ही बैठना है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि देखो हमारी बुद्धि इतनी शार्प नहीं होती एक तो, दूसरा हमें बातें इतनी याद नहीं रहती कि हमारे रिटेन रख कर पाए अपने अंदर ये सब बातें, है ना, क्योंकि नई नई बातें सुन रहे हैं हम, कभी सुनी नहीं है इतने सालों से, है ना। तो आप पूरा सत्संग नहीं अगर आप लिखना चाहते या लिख सकते तो आप डॉट पॉइंट्स बना लो, है ना, कि ये लाइन मुझे अच्छी लगी, चलो यार मैं टॉपिक का नाम लिखना ऊपर और नीचे 10-15-20 पॉइंट्स लिख लो। उसके बाद मंथन करना ना कि मैं इसमें से क्या क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप बार बार सोचोगे सुनोगे पढ़ोगे नहीं समझ आ रहा है दोबारा सुनो सत्संग, पॉडकास्ट पे सुन सकते हो या फिर स्काइप पे, या एक महीना तक सत्संग रहते हैं उसके बाद तो वहीं से रिमूव हो जाते हैं अपने आप ही, है ना, तो आप सुन सकते हो गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग सुन सकते हो आप यूट्यूब पे हैं, आप सुन सकते हो भगवद गीता के श्लोक भी है उसमें और सारे टॉपिक्स हैं, है ना। तो उससे क्या होता है हमारी बुद्धि उपजाऊ होती है कि हमें चीजें ये जब बातें जब बार बार सुनते हैं मथते हैं अपने अंदर माइंड में इंट्रोस्पेक्शन चलता है तो अपने आप ही फिर ये चीजें अंदर घुसना शुरू हो जाती है, फालतू दुनियादारी की बातें सब जैसे होते हैं ना परमात्मा ने डिलीट बटन दबा दिया बस वो हो जाता है, फिर बाहर से कितनी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन अंदर से आपका माइंड शांत होता है ना। आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स तो आती है लेकिन वो परसेंटेज में आपका जो 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 स्ट्रेसफुल लेवल होता है ना, वो परसेंटेज में आप पहले से कंपेयर करोगे ना कि जब मेरे को कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं कितना स्ट्रेस लेती थी, तो जब अब आप करोगे, जब आप भगवत गीता सुन लियो, सुन चुके हो, आपको एक दो एक डेढ़ साल हो गया है, तो अपने आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो कि कितना मतलब बहुत डिफरेंस है कि जब मैं पहले मेरे को प्रॉब्लम आती थी तो मैं क्या सोचती रहती थी, और अब मैं बिल्कुल मतलब उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है हमारे सोचने की। परसेंटेज में देखना, आपकी जो बात बोल रही हो ना मैं, उसको परसेंटेज में अपने आप को असेस करना हमेशा ही। तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ, भगवत गीता पढ़ना, हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, उससे जिससे कि हमें नॉलेज मिल रही है फ्रेंड, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए, भगवान से जुड़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जितना कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए खाना खाना है, नहाना है या सोना है, ब्रश करना, ये बातें हम बोलती नहीं है ना, हमें पता है कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, खाना खाना है ना। तो ये बातें अगर आप अपने जीवन में डाल लोगे ना, तो आपको इनके बिना आपके आपको चैन नहीं आएगा कि नहीं यार मुझे भगवद गीता सुननी है, नहीं मुझे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, भोग लगाना है भगवान को, भोग लगाने के बाद ही कुछ खाना है ना, तो अपने आप ही वो चीजें होना शुरू हो जाती है फिर, जब आप इसकी आदत बना लोगे, उसको संस्कार में डाल लोगे, है ना। थैंक यू सो मच उमा। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग वाक्य दिव्य था, बहुत ही आनंद आया सुन के, इतना मजा आ रहा था, मन कर रहा था कभी खत्म नहीं हो, इतनी अच्छी बात है। और अपने जीवन को अगर हम भागवत गीता से रिलेट करें, तो अगर मैं लास्ट फर्स्ट रीडिंग में लास्ट में जुड़ी थी, 17-18 चैप्टर मैंने किया था, तो तब ऐसे पूजा पाठ करते थे, गीता भी पढ़ते थे, भागवत गीता, तो कुछ समझ नहीं आता था। तो ये सत्संग को सुनते सुनते इतना, पहले पता नहीं था खुशी क्या है, खुशी का मीनिंग नहीं पता था, हम क्यों आए, क्या है, कौन है, कुछ नहीं पता था। अब ये बड़ी बड़ी बातें अब भगवान की दया से और आपके सत्संग से, थैंक यू मोना जी, इतना अच्छा सत्संग करवाते हो ना आप, कि इस छोटी सी बुद्धि में घुसना शुरू कर जाती हैं बातें। तो भागवत गीता से अगर मैं 2 साल अपना 2.5 साल से रिलेट करूं, तो इतना कुछ चेंज आया है कि वही पहले वही मैं अपना बताती हूँ, शुरू में मैं यही बताती थी कि मैं लिस्ट लेके जाती थी, मंदिर जाती, पर सत्संग जाना है वही कुछ मांगना है, यही था, पूजा पाठ करना है तो ये दे दो वो दे दो, मतलब मटेरियलिज्म की बातें, बस ये चाहिए, डिजायर खत्म नहीं होती। अब समझ में आते हैं क्यों आए हैं, भाई हम कौन हैं, हम परमात्मा का अंश हैं जो परमात्मा से बिछड़ गए हैं, और इसी जोनी में, मनुष्य जोनी में, पेड़ पौधे या पशु पक्षी उन सबसे ऊपर है हम, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है छोटी सी चाहे, पर भगवान से प्रे करनी है हमें रोज कि भगवान जी इस बुद्धि में आपको समझने की समझ आए। तो बस वो सब छोड़ के अब मेरे को अपनी ये चिंता होती है कि भगवान जी कैसे कुछ अच्छा किया जाए, क्या होगा मेरा अगर 4 घंटे मेरे डिवोशन में चले जाए। मेरा सबसे बड़ी वीक पॉइंट मेरा ये है, मैं नियम नहीं बना पाती हूँ। आज अगर मैंने 4 घंटे दिए या 1 घंटा दिया, तो दूसरे दिन ऐसा नहीं होगा। माला अगर मैंने आज इतनी सारी करनी मोना दी, मेरे को हमेशा ही बोलते हैं कि नियम बना के चलना है किरण जी, अगर आज 15 की है तो कल भी 15 करनी है, तो मैं उसमें बहुत वीक हूँ बहुत। तो नहीं तो स्टेबिलिटी करना भी आ गया, मेरे को स्टेबल रहना आ गया कि हाइपर नहीं होना है भाई, नहीं कुछ मेरा तो मेरे पाप कर्म है, कोई आ गया अगर दुख आया, अगर सुख आया तो उसमें ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ये सब भगवान का दिया, धूप छाओ, हंसना रोना, दिन रात ये सब चलता रहना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है कि हम भगवान के प्यारे कैसे बने। तो अब ईशा जी हैं, उन्होंने ही मुझे इस सत्संग से जोड़ा था, तो अब पहले इतनी सारी बातें पता नहीं किस किस से और किस किस की बुराइयां मैं खुद करती थी, मैं ही बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, बट अब नहीं, अब एक ईशा जी से मेरी बात होती है, बात तो सत्संग के रिलेट ही होती है। ईशा यार आज इतना किया, मेरे को टाइम भी होता है पर मैं टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ, यार मेरी कमजोरी है, ये सब बातें करते हैं हम, तो मेरे को पता ही नहीं चलता है कि भगवान जी की कृपा हुई है या नहीं हुई है। पर गुस्सा अगर डिवोशन का लेवल है, अगर भोग लगाना, अगर मैं खाना बनाना है, तो मेरे को फीलिंग आती है कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, सफाई करनी है। मेरे को पहले ये था मंदिर कहाँ बनाना, मंदिर कहाँ, अब ये नहीं है, अब मेरे को याद है भगवान जी मैं आपके घर में रह रही हूँ। सत्संग से इतना फर्क पड़ता है अगर नित्य निरंतर चलेंगे। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत ही बढ़िया रिव्यू जैसे कि आप देते हो, थैंक यू।
और जैसे कि आप बोल रहे हो कि पता नहीं मुझे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, तो फर्क तो फ्रेंड्स हमें खुद ही पता चलेगा, है ना। जैसे आपको लग रहा है कि मुझे गुस्से में अगर मेरा कंट्रोल हुआ है, स्टेबिलिटी आ गई है मुझ में, है ना, या मैं निंदा चुगली नहीं करती हूँ, तो ये परसेंटेज में देखनी है ना अपनी ग्रोथ। कि पहले मैं जब भी बात करती थी, है ना, दिन में मैं 2-3 घंटे बिताती थी या 4 घंटे बिताती थी निंदा चुगली में, या क्रोध करती रहती थी उसमें। मैं मतलब हफ्ते मेरे को 7 दिन होते हैं, 7 दिन में मेरे को 70 बार क्रोध आता था, अब मुझे 7 दिन में कितनी बार क्रोध आता है? 7 बार तो हुआ कम से कम, अगर 70 बार आता है 7 बार हुआ, मैं दिन में 1 बार, है ना, फिर उसको 7 बार से 5 बार करना है। लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं हम, है ना। कई बार हमारी गलती होती है और हम क्रोध में लगातार ही हार्श वर्ड यूज करते हैं और हमें लगता है कि दूसरे की गलती है ना। और जब हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हमें बाद में समझ भी आती है कि अच्छा हुआ मैंने बोला नहीं, कि मेरी गलती थी ये, है ना। ये हमें अच्छा लगता है फिर कि उस वक्त हमने नहीं बोला, तो अच्छा किया ना, उस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रख ली, है ना। तो अगर ये डिवाइन गुण आपके बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप आपकी ग्रोथ हो रही है ना। और रही नियम की बात, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि अगर माइंड में सोच लिया कि मेरे को 8 माला ज्यादा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ज्यादा बड़े बड़े नियम मत बनाओ। ये थोड़ी मेरे से नियम नहीं टूटते, मेरे से भी टूटते हैं। मैं भी कई बार जैसे मेरा टारगेट होता है 32 माला करनी है, लेकिन कई बार नहीं भी होती है, है ना। और वो कई बार तो काफी टाइम के लिए होना बंद हो जाती है ना, लेकिन कोशिश वही रहती है कि नहीं करनी है मुझे, है ना। मतलब माइंड में होना चाहिए कम से कम कि मेरे को 8 माला करनी है ना। मान लो 8 माला करनी है या 16 माला करनी है, उसको माइंड में रखना है कि मुझे करना ही करना। आज नहीं कर पाई, चलो मैं कल कर लूंगी, है ना। लेकिन इसको टालते नहीं रहना है। और आप टेलीकाउंटर रख सकते हो कि अगर आप माला नहीं कर सकते हर वक्त, तो टेलीकाउंटर ले सकते हो। आप कहीं जाते हो, किसी घर गए हो, किसी के वॉक करने जाते हो, तो आप टेलीकाउंटर साथ में रख सकते हो उसको। आपके पास है टेलीकाउंटर किरण जी? एक आपके पास किट भेजी थी गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से, आपको आई थी, आपको मिली है? हरी बोल,
तो मंगवाई हुई है तो अभी करती हूँ उससे।
नहीं, आपको आपको भेजी गई है, ईशा के पास होगी आपकी किट। हाँ जी, हमने आपको भेजी थी, हाँ, वो माला और टेलीकाउंटर और भगवद गीता की बुक भेजी है आपको। तो आप टेलीकाउंटर आप कर सकते हो, है ना, माला कर सकते हो। मतलब नियम बना के हमें ये लगता है कि हमें करना ही करना, तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ रूल रेगुलेशंस का भी हमें पालन करना चाहिए, है ना। जैसे भगवद गीता पढ़ना भी हमारे नियम में होना चाहिए कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने चाहिए हमें, भोग लगा के ही खाना खाना है हमें, या एक टाइम की आरती करनी। तो नियम बना लिया ना कि घर में एक बार आरती होगी ही होगी, चाहे कोई वो बैठे ना बैठे, मेरे को अकेले ही करनी। तो ये नियम बना लिया हमने, है ना, भोग लगाने का नियम बना लिया, तो उससे हम करते हैं। हम सोचेंगे नहीं यार आज भोग लगाया, कल देखूंगी, कल मेरे को टाइम मिला तो कर लूंगी, है ना। तो फिर हम कर नहीं पाते हैं उसको अच्छे से। एक बार नियम बना लिया कि मुझे करना ही करना है ना, भगवान के लिए खाना बना रही हूं मैं, है ना। तो इस भाव से अगर हम करेंगे तो तभी फिर चेंजेस आएंगी ना, तो फिर उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है उन चेंजेस की, बजाय इसके कि हम सिर्फ सुनते रहे, है ना। तो जो नियम बोले गए हैं तो हमें जरूर हमें अपनाने चाहिए, चाहे छोटे छोटे हमें नियम लेने हैं। जैसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पाती हूँ, है ना, ज्यादा माला नहीं कर पाती, तो आप सोचो कि मैंने 8 माला रोज करनी है, बस सिंपल। अगर आपको 8 माला ईजी लगती है, 8 माला करो, 1-2 महीने 8 माला करो, फिर आप उसको और बढ़ा दो 4-5, है ना, मतलब 12-13 पे ले आओ, फिर इसको 16 पे ले आओ, तो बस 16 तक आपको खत्म कर लो कि 16 तक मैंने करना ही करना, फिर आपका मन करता तो उसको आगे बढ़ा दो। तो इस तरह से अगर नियम बनाते तो हमारे लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है ये चीजें, है ना। तो हम कर पाते हैं, फिर हमें पता है यार करनी ही करनी है, तो हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे फिर उसको। और उसको हम दिन में नहीं एक ही टाइम बैठ के करना है, क्योंकि 2-3 घंटे निकालना हमें बहुत मुश्किल लगता है एज ए हाउस वाइफ, है ना, मैं समझ सकती हूँ। तो उसको मैं भी इसको ब्रेक करके ही करती हूँ, दिन में 3-4 बार में करती हूँ मैं, है ना, सुबह कर ली, दिन में कर ली, शाम को कर ली, कई बार रात को वो करने जाती हूँ उस वक्त ले जाती हूँ टेलीकाउंटर, है ना। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच किरण जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। आयुषी जी, आज आपका भजन की टर्न है, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू मोना दी, आज का सत्संग भी बहुत ही अच्छा था, तो मैं भजन की तरफ ही चलूंगी। हरी हरी बोल। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे।
राधा बिन सोना सावरिया, राधा बिन सुनी बांसुरिया, राधा बिन भक्ति रस सुना, हम राधा के गुण गाएंगे, तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। ब्रज मंडल की गरिमा राधा, ब्रज मंडल की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा, जितना भी कृष्ण का ध्यान करो, बिन राधा याद न आएंगे, तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा लक्ष्मी राधा काली, राधा लक्ष्मी राधा काली, मेरी राधा बरसाने वाली, मेरी राधा बरसाने वाली, जिस रूप में ध्यान लगाएंगे वैसा ही दर्शन पाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे हरि बोल।
थैंक यू सो मच आयुषी जी, ब्यूटीफुल भजन गाया आपने, बहुत ही भाव से गाया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल एवरीवन, बोल हरि बोल, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, जय श्री राधे कृष्णा।